जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद भगवत गीता की जय गौर निताई की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल हरी हरी बोल हरी हरी बोल शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ जय श्री कृष्णा न शस्त्र पर न धन पर न ही किसी युक्ति पर हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर हरी हरी बोल एवरीवन हरी हरी बोल जय श्री राधे कृष्णा हर हर महादेव जय माता की। तो फ्रेंड्स आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और जो हम लोगों को पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स पहले तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सबकी बुद्धि में परमात्मा विराजमान हो, अपनी विशेष कृपा हम पर बरसाएं ताकि हम सब उनकी वाणी को उनके इंस्ट्रक्शंस को उनकी गीत को ठीक से समझ सके और अपने जीवन में भी अपना सके, है ना। तो फ्रेंड जैसे कि आपको पता है कि हम सब लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं, है ना, और इस प्रक्रिया में सरल भगवद गीता का कोर्स हम आरंभ कर चुके हैं जो कि एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है हमारी आध्यात्मिक यात्रा में। सबसे बड़ी बात है कि घर बैठे बैठे हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो भी कोर्स एक डेढ़ साल चलने वाला है ना, तो हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी, ऐसी तीर्थ यात्रा हमारी आरंभ हो चुकी है, है ना। तो थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि आज तक हम क्या क्या कर चुके हैं। तो जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स सरल भगवद गीता का कोर्स हमारा आरंभ हो गया है ना, तो हम जानते हैं कि कम्प्लीटली हैप्पी होने के लिए हमें कम्प्लीटली हेल्दी होना पड़ता है और हमारा लक्ष्य कम्प्लीट हैप्पीनेस है और वहां तक पहुंचने के लिए हमें कम्प्लीटली हेल्दी होना पड़ता है, यानी कि स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फैमिली हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ में बैलेंस लाना है हम लोगों को। और ये करने के लिए हमें सबसे ज्यादा ध्यान हमें अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पर देना है, यानी कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य हमें अचीव करना है और उसको आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बेटर करने के लिए हमें सत्संग साधना सेवा सदाचार का जीवन जीना है। और सत्संग हम डिटेल में बात कर चुके थे कि सत्संग मतलब उन लोगों के साथ एसोसिएट करना जहां से आपको भगवान की तरफ बढ़ने में प्रेरणा मिलती है। साधना मतलब वो अभ्यास, वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो आपको सत्संग में बताई जाती हैं उनको प्राइवेटली करना, चाहे हरिनाम करना हो, भोग लगाना हो, अर्चा विग्रह की पूजा करना हो, व्रत करना हो, आरती करना हो, है ना, या अपने आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ना हो, ये कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं। क्या होता है उससे, जिससे हमारा मन जो दुनियादारी से अटैच्ड है वहां से निकलकर प्रभु के साथ अटैच्ड हो। फिर सेवा, अध्यात्म का तीसरा स्तंभ था सेवा, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। सेवा मतलब निस्वार्थ होकर जगत कल्याण के लिए कार्य करना, ये समझते हुए कि हम निमित्त मात्र है और करवाने वाले ईश्वर है। उसके बाद हमने हमारे शास्त्रों द्वारा एक और मॉडल है जो कि सेवा से ही रिलेटेड है, जिसका नाम था विचार आचार प्रचार, कंटेम्पलेट इम्प्लीमेंट और प्रीच, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या हमने डिस्कस किया था। हमने तीन स्टेजेस डिस्कस की इस मॉडल की जिससे हमें गुजरना है, और वो तीन स्टेजेस कौन सी हैं, विचार आचार और प्रचार, कंटेम्पलेट इम्प्लीमेंट एंड प्रीच। तो जो जितनी अच्छी तरह से पहली स्टेज पे काम करेगा, पहली स्टेज मतलब विचार, फिर उतनी ही बढ़िया तरह से वो सेकेंड स्टेज पर पहुंचता है आचार, आचार मतलब आचरण व्यवहार। फिर जब वो वैसा ही कर रहा होगा तो अपने आप ही उसके जीवन में प्रचार की अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगी। हमें कुछ भी अलग से नहीं करना है ना, मतलब अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या हमने सत्संग से सीखा, उसको विचार कहते हैं। जरा मंथन करो कि हम क्या कर रहे हैं और भगवान हमें क्या कह रहे हैं, है ना। हम कुछ और तरफ जा रहे हैं और भगवान हमें दूसरी डायरेक्शन में ले जाने को बोल रहे हैं, है ना। तो अगर ये सारे गैप्स हैं तो हम अपने जीवन में इन विचारों को उतारने की कोशिश करनी चाहिए, जो भी हम सत्संग से सुन रहे हैं या अच्छी बुक्स के द्वारा हम पढ़ते हैं या कुछ भी स्पिरिचुअल लीडर्स आपको जो बताते हैं, आपको अच्छा लगता है कि यार नहीं मेरे जीवन में तो गैप है, जो ये बोल रहे हैं और जो मैं अपने जीवन में करती हूँ इसमें तो एक गैप है, ह्यूज गैप है ना। तो हमें उन विचारों को उतारने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। जैसे कि हमने समझा था क्रोध के एग्जांपल से समझा था, निंदा का एग्जांपल हमने लिया था, है ना, कि अगर मैं छोटी छोटी बातों से अगर मैं हीटेड हो जाती हूँ मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है, तो हमें क्या करना है ना, तो हमें विचार करना है कि ये मेरा गुस्सा है ना, या मेरा निंदा करने का संस्कार है जिसमें कि मेरे को थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी मजा आता है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो मैं चिल्ला रही हूँ ये दूसरों की गलती हो, ये मेरे अंदर की कमी भी हो सकती है कि कहीं मेरे ईगो तो नहीं बड़ी हुई है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं ना अपने अंदर, तो ये विचार का पार्ट हो जाता है। इस तरह से और बहुत सारी हमारी नेगेटिव हैबिट्स होती हैं, है ना, जो कि हमें सत्संग से दिखना शुरू हो जाती हैं। तो इस पर विचार करके अगर आपने पक्का कर लिया अपने मन में कि ठीक है, और वो हमें पता भी होती है, सत्संग नहीं भी कर रहे होते तब भी हमें पता होता है कि यार ये हमें कमी है, लेकिन सत्संग से तो बहुत ज्यादा दिखने शुरू हो जाती है ना, वो तो एक अलग बात है, लेकिन सत्संग नहीं भी कर रहे हो तब भी हमें पता होती है यार कि कुछ तो मैं गलत करती हूँ, है ना, कुछ कमियां हैं मेरे में जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए, है ना। लेकिन हमें वो ताकत नहीं होती, वो पावर नहीं होती, कंट्रोल नहीं होता हमारा उन चीजों पर, अपनी अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होता ना हमारा, एक्चुअली हमें पता ही नहीं होता कि हम इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। सत्संग से जो हम सुनते हैं तो उससे हमें पक्का करना है अपने विचारों को कि भी कौन सी मैं नेगेटिव हैबिट्स में फंसी हुई हूँ, कौन सी चीजें मुझे ठीक करनी है। जब हम सत्संग सुनते रहते हैं है ना, जैसे कि मान लो मेरा गुस्सा है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, बट मुझे अंदर से लगना शुरू हो जाएगा कि यार मुझे बदलना है इसको, है ना, क्योंकि ये सही नहीं है जो मैं कर रही हूँ। तो जब इस विचार पर आप पक्के हो जाते हो ना, तो आपको विश्वास हो जाता है कि चलना तो मैंने प्रभु के रास्ते में ही है, है ना, कोई बात नहीं, अभी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, अभी मेरे से नहीं हो रहा है, मैं रोज सोचती हूँ, लेकिन फिर से मैं वही गुस्से का संस्कार है, मान लो फिर से मैं वही गुस्सा करती हूँ, और दिन में 10 बार कर रही हूँ, तो अगले दिन मैं दिन में 10-12 बार भी कर रही होंगी, है ना। तो अभी तो मैं इसको ठीक नहीं कर पा रही हूँ, बट मुझे चलना इस रास्ते में है, भगवान के रास्ते में, है ना। तो अगर भगवान की कृपा रहेगी तो मैं इस पर कंट्रोल भी कर पाऊंगी इन चीजों, है ना। तो ये विचार वाला पार्ट जब पक्का हो जाएगा ना, तो उतनी ही आसानी होती है फिर उसको आचरण में लाने की। तो आचार मतलब आचरण, है ना, मतलब जब हम अपने ऊपर विचारों को उतारते हैं, जो हमने सत्संग से सीख लिया चीजों को, उसको जब हम अपने जीवन में उतारते हैं, है ना, मतलब जब हमें पता चल गया कि मुझे गुस्सा कम करना है, निंदा करनी बंद करनी है, है ना, लालच का संस्कार है मेरे को उसका बंद करना है, कंपैरिजन का संस्कार है मेरे को उसको बंद करना है, तो समझ आ जाता है एक व्यक्ति को कुछ मुझे नेगेटिव हैबिट से निकलना है, है ना। लेकिन होता क्या है, हम उसको छोड़ नहीं पाते। तो भगवत गीता जब पढ़ी तो पता चला एक हायर लेवल का टेस्ट होता है ना, मतलब एक हायर टेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है, भगवान के साथ जुड़ना एक हायर लेवल का टेस्ट है फ्रेंड्स। बाकी सारे सांसारिक सुख क्षणिक हैं, वो आते हैं चले जाते हैं, है ना। कोई भी चीज हमें अगर मिलती है जो हमें चाहिए, है ना, जो बहुत टाइम से हम सोच रहे हो कि हमें घर लेना है ना या हमें गाड़ी लेनी है, तो हम बहुत टाइम से सोच रहे थे, मान लो 4-5 साल से सोच रहे थे, लेकिन वो मिल भी जाता है तो कितने टाइम का सुख होता है, वो कुछ ही दिनों का, है ना। तो वो संसारिक सुख सारे टेम्परेरी है, वो आते और चले जाते हैं, है ना। तो थोड़े से मजे के लिए हमें बहुत सारी सजा मिलती है कई बार। तो ये विचार आना शुरू हो जाता है और भगवत गीता ने इसको पक्का किया, मुझे भगवान से जुड़ना है ना। तो जब कोई हाई टेस्ट से जुड़ना शुरू कर देगा, परमात्मा से जुड़ना शुरू कर देगा, तो धीरे धीरे उसके लोअर टेस्ट खत्म होने शुरू हो जाते हैं, मतलब उसकी नेगेटिविटीज कम होना शुरू हो जाती है फ्रेंड्स, है ना। इसलिए जो बताया जाता है ना बातें कि सत्संग से सीखी, और हमें पता है कि साधना में जो चीजें हमें उतारनी है, है ना, साधना में हम अर्चा विग्रह की पूजा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं भगवान को, जब हम खाते हैं तो हम उनको सात्विक भोजन का भोग लगा सकते हैं, फिर हम आरती कर सकते हैं इकट्ठे मिलके, अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। तो धीरे धीरे फिर क्या होता है, जब हमें हायर टेस्ट का आनंद मिलना शुरू होता है ना, तो धीरे धीरे लोअर टेस्ट कम होने शुरू हो जाते हैं हमारे जीवन के। जैसे एक व्यक्ति को 10 लाख रुपए मिल रहे हो और दूसरे उसको 1,000 रुपए मिल रहे हो, तो उसको वो 1 सेकंड नहीं लगाएगा डिसीजन लेने में कि मुझे तो 10 लाख की तरफ ही जाना है ना। वैसे ही हायर टेस्ट का कॉन्सेप्ट अगर समझा, फिर विचार आना शुरू हो गए कि ये गड़बड़ कर रहे हैं हम, है ना, ये टेम्परेरी मजा वाली चीजें गड़बड़ है फ्रेंड्स, है ना। और कई बार ये नहीं है कि आज आपने सत्संग सुना तो आपको आज ही आपने सोच लिया कि यार मुझे, मैं सच में मैं तो बहुत गुस्सा करती हूँ, या निंदा का संस्कार मेरे में बहुत रहता है, मैं जब भी बात करती हूँ किसी की निंदा चुगली करती हूँ, है ना। तो ये नहीं कि आज आपने सुना और आप आज ही आपसे अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, है ना। कई बार 2-3 साल भी लग जाते हैं, और कई बार हम बहुत जल्दी भी छोड़ पाते हैं, 5-6 महीनों में भी हम चीजों को छोड़ पाते हैं, जैसे जैसे जिसका जितना लेवल का संस्कार है ना, प्रैक्टिस करने से फोकस करने से आप कर पाते हो, नित्य निरंतर आप चल रहे हो, सुन रहे हो, अच्छी चीजें अपने अंदर डाल रहे हो, है ना, तो आपको समझ आना शुरू हो जाता है कि यार सच में मुझे कहाँ पे वर्क करना है। और जब हम नाम जाप करते हैं, भगवान को भोग लगा के वो प्रसाद रूप में खुद खाते हैं, है ना, भगवान से जुड़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे नेगेटिविटीज पे ही वर्क होता है। पहले जो हमने दुनिया को बुरा बनाया होता है, तो सबसे ज्यादा गंदगी हमें अपने आप में दिखती है ना, तो वो चीज फिर आचरण में आ। तो डिवोशन भक्ति हेल्प करती है ना, मतलब आपने अपने विचार को पक्का किया, आपने कुछ भी जो सुना या पढ़ा उसको पक्का किया, फिर आप उसको आचरण में ले आए, है ना, तो फिर इस बात में वैल्यू आ जाती है, है ना। जब आप इसको आचरण में ले आते हो ना, तब बात में वैल्यू आती है। तो पहले तो आप सुन रहे हो, सत्संग में सुन रहे हो, है ना, और आप दूसरों को बोल रहे हो, तो वो हेल्प नहीं करेगा, दूसरों को नहीं सुधारेगा वो सारी चीजें, जब तक कि आपने पक्का कर लिया, है ना, कि मेरे को इस संस्कार पे वर्क करना है ना, और आप फिर उसको आचरण में ले आए, तो फिर वो आपका संस्कार हो गया, आपका मतलब आपकी प्रॉपर्टी हो जाता है फिर वो। जब तक आप उसको अपने जीवन में नहीं लाए हो, तो वो आपका संस्कार थोड़ी, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है ना वो। अभी तो आप सुन रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है कि मैंने सत्संग में ये बातें सुनी, या मैं जो अच्छी बुक्स पढ़ती हूँ, लेकिन भगवद गीता में रियली फ्रेंड्स एक पावर है उस बुक में, उन शब्दों में भगवान के, कि वो एक पावर आ जाती है, कि हमें लगता है कि यार नहीं यार, कितना गंदगी है हमारे अंदर, हमें उन गंदगी को दूर करना है ना। और भगवान तो एक शुद्ध जगह में वास करते हैं ना, अगर भगवान हमारे अंदर है, हमारे हृदय के अंदर है, तो हमें अपने हृदय को शुद्ध बनाना है ना, छल कपट से दूर रहना है, क्योंकि भगवान तो हमें अंदर से जानते हैं। बाहर हम दुनियादारी में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अंदर से अगर हम अच्छे नहीं है, तो भगवान तो हमें वहां से असेस कर रहे होंगे। इसलिए हमें बाहर से अच्छा नहीं होना, हमें अंदर से अच्छा होना फ्रेंड्स। जो आप अंदर से होंगे ना, वो आप बाहर भी कर रहे होंगे फिर ऑटोमेटिकली। अभी होता क्या, हम अंदर से गलत सोच रहे होते हैं, बाहर से हम अच्छा अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन वो वाइब्रेशन तो जाती नहीं है वो सही से, इसलिए वो असर नहीं करती है वो हमारी जो अच्छाई, जो बाहर बाहर की अच्छाई होती है ना। तो डिवोशन हेल्प करती है, और अगर हमने अपने विचारों को पक्का कर लिया, फिर हम उसको आचरण में ले आए, फिर उसकी वैल्यू बन जाती है उस बात की, उस विचार की, और फिर क्या होता है, बहुत सारे लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाता है फ्रेंड्स। पहले हमारा खुद का हृदय परिवर्तन होगा, फिर हमारे हृदय परिवर्तन से दूसरों का हृदय परिवर्तन भी होना शुरू हो जाता है फ्रेंड्स, है ना। और अगर हम ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन अगर हम खुद पर उन चीजों को अमल नहीं कर रहे हैं, तो फिर डिलीवरी नहीं होती, है ना। हम बच्चों को बोलते हैं कि यार ये हमारी बात नहीं सुनते, है ना, वो इसलिए नहीं सुनते क्योंकि हमारी कथनी और करनी में ज्यादा गैप होता है ना। तो ये विचार आचार हमें स्ट्रोंग कर देगा, हम जो बोल रहे हैं ना उसको करने का जब हम प्रयास कर रहे होंगे ना, तो फिर प्रभु हमें गाइड करेंगी कि अब डिलीवरी करो यहाँ पर, है ना। तो बातें फिर आसानी से समझ भी आएंगी दूसरे व्यक्ति को, और वो इम्प्लीमेंट भी कर पाएगा, है ना। तो ये मॉडल हमने समझा था विचार आचार और प्रचार का, है ना। तो अध्यात्म के तीन स्तंभ पे हम बात कर चुके हैं, सत्संग, साधना और सेवा, जो कि गोलोक एक्सप्रेस द्वारा बनाया गया एक मॉडल है, है ना। अध्यात्म के चार स्तंभ, फोर पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। तो उसका आज हम फोर्थ पिलर करने वाले हैं। हम आज सदाचार पर कुछ विचार रखेंगे। तो सदाचार मतलब सद प्लस आचार, सद मतलब अच्छा या गुड, आचार मतलब आचरण या व्यवहार, बिहेवियर। तो सिंपल शब्दों से सदाचार का मतलब हुआ गुड बिहेवियर, मतलब अच्छे और बुरे इरादों, निर्णयों एवं कार्यों में अंतर करना सदाचार कहलाता है, है ना। तो सदाचार से एक व्यक्ति क्या होता है, एक सच्चे रास्ते को चूज करता है, भगवान के रास्ते को चूज करता है, वो सच्चे मार्ग पर चलता है, जो अच्छे मतलब आपसी अच्छे संबंधों के लिए हेल्पफुल है, और समाज में समरसता को बढ़ावा देता है, प्रोत्साहित करता है ना। तो सदाचार एक संतुष्ट जीवन जीने के लिए, एक सेटिस्फाइड लाइफ जीने के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो सिंपल शब्दों से सदाचार का मतलब हुआ गुड बिहेवियर। तो स्पिरिचुअल लाइफ में, है ना, सत्संग करें, साधना करें, सेवा करें, तो ये सब अगर हम ठीक से कर रहे हैं, तो उसका असली आउटकम फ्रेंड्स हमारे प्रैक्टिकल बिहेवियर में ये दिखना चाहिए, कि हमारा बिहेवियर पॉजिटिव हो जाना चाहिए, कि हम कैसे दूसरों से बात करते हैं, है ना, कैसे हम हार्शली बात कर रहे हैं या पोलाइटली बात करते हैं, है ना, हमारा हेल्पफुल एटीट्यूड है या बदले की भावना है हमारे अंदर, या जो भावना है भी तो हम उसको खत्म करके हम लोगों को माफ कर पाते हैं। तो बेसिकली हमारा जो एवरीडे लाइफ में जो बिहेवियर है ना, वो अगर पॉजिटिव हो रहा है अगर, तो हम सदाचार की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड देखो, शास्त्रों में भगवान ने बताया है, या भगवद गीता में भगवान ने बताया है, कि सच में जो हम मेरा डिवोटी है, जो मेरा फेवरेट डिवोटी है, मतलब जो मेरे साथ डीपली जुड़ जाता है, वो हर जगह मुझे देखता है और मैं उसको हर जगह देखता हूँ। यानी कि जब हमको समझ आ जाता है कि परमात्मा की प्रेजेंस सृष्टि के कण कण में है ना, चाहे वो जानवर हो, कोई प्लांट हो या कोई ह्यूमन बीइंग हो, उसके अंदर अगर आप भगवान देख रहे हो, परमात्मा को देख रहे हो, तो आपका सबके साथ बिहेवियर कैसा होगा? फिर आप परमात्मा की प्रेजेंस देख रहे हो, ह्यूमन बीइंग में भी देख रहे हो, जानवर में भी देख रहे हो, किसी है ना, और प्लांट्स में भी देखते हो, तो फिर ऑटोमेटिकली अगर आप सच में स्पिरिचुअली एडवांस हो गए हो तो समझ लो आप में सदाचार आ गया है ना। जैसे इंडियन कल्चर में हम किसी को नमस्ते कहते हैं, है ना, तो हम किसी और के अंदर आत्मा और परमात्मा की प्रेजेंस को समझकर उसको नमन कर रहे हैं, है ना। तो डीप सेंस में वैदिक कल्चर में हम सबके अंदर बैठी हुई आत्मा और हमारे परमात्मा को रिस्पेक्ट देना शुरू करें, तो जब वो प्रैक्टिकल कंडक्ट में हमारे आ जाएगा तब हम सदाचारी जीवन जी रहे हैं फ्रेंड्स, है ना। तो अगर हम सत्संग साधना सेवा करेंगे और हमारी बुद्धि में बातें आएंगी अध्यात्म की, डिविनिटी की, तो वो नॉलेज जो भगवान चाहते हैं हम उन सिद्धांतों पर अपना जीवन जिए, है ना, तो वो नॉलेज हमें मिलेगी, वो ज्ञान हमें मिलता है जो कि भगवान चाहते हैं कि हम भगवान की जो वाणी है, जो उनके सिद्धांत है, जो उनके इंस्ट्रक्शन है, उनके अनुसार अपना जीवन जिए, तो वो फिर हम कर पाते हैं। बट चॉइस आपको लेनी है, चॉइस हमें लेनी है फ्रेंड्स, है ना। तो अब आईआईटी का एग्जाम देने के लिए देखो फ्रेंड्स 10 लाख लोग बैठते हैं, बट एग्जाम तो 2-3 हजार लोगों का ही निकलता है ना। तो अब आपको चॉइस लेनी है कि आपको 2-3 हजार लोगों में आना है या 99% लोगों में भेड़ चाल में रहना है ना। हम लोग ज्यादातर ऐसे ही करते हैं ना, जो दूसरे कर रहे होते हैं, जो हमारे रिलेटिव कर रहे होते हैं, हमारी फ्रेंड्स कर रही होती है, हम भी वैसे ही बन जाते हैं, तो ये हमारी चॉइस है। लेकिन अगर आपने कुछ अलग करके दिखाना है, अगर आपको आपके जीवन का सदुपयोग करना है, अपने जीवन का रियल पर्पस समझना है, तो फिर जब आप सत्संग साधना सेवा करोगे ना, तो आपको रियल पर्पस अपने आप ही समझ आ जाएगा फ्रेंड्स। फिर आपको समझ आएगा कि मुझे दुनिया को खुश करने वाली काम नहीं करने हैं, जो कि मैं करती रहती थी पहले, तो मुझे कभी खुशी नहीं मिली। मुझे प्रभु को किससे खुशी मिलती है? मैं जगत कल्याण करूं, मैं विनम्र रहूं, मैं सबसे प्यार से बात करूं, मुझे वो कार्य करने हैं जिससे प्रभु खुश हो जाए। जब ये बातें हमारी बुद्धि में आना शुरू होती है ना फ्रेंड्स, तो फिर ये हम सोचना बंद कर देते हैं कि बाकी लोगों की परिभाषाएं क्या है, है ना। तो फॉलोअर की जगह हमें एक ट्रेंड सेटर बनना है, एक लीडर बनना है पॉजिटिविटी, है ना। अगर आप देखो किसी महापुरुष को याद करते हो, तो क्या वो वाले लोग होते हैं कि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी क्यों ना ऐसा करूं, या जिन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को, जो सबकी भलाई वाले प्रिंसिपल्स थे, उन पर चलने के लिए अपने जीवन को निछावर कर दिया। तो आपने ये देखना है कि क्या आपने भेड़ चाल वाला जीवन जीना है या सत्य मार्ग पर चलने के लिए बेशक मुश्किल रास्ता लेना है और प्रभु को खुश करना, ताकि आत्म कल्याण हो और जगत कल्याण हो। तो उसकी चॉइस फ्रेंड्स हम सब की है, आपकी है। आपको भीड़ बनना है या आपको प्रभु के रास्ते पर चलना है, है ना। और अगर हम देखो फ्रेंड्स अर्जुन और दुर्योधन की जर्नी में डिफरेंस देखे ना, तो अर्जुन के अंदर ये प्रेरणा थी कि मैंने भगवान से गाइडेंस लेनी है, और दुर्योधन के अंदर ये प्रेरणा थी कि मैंने शकुनी से गाइडेंस लेनी है। तो शकुनी रिप्रेजेंट करता है हर गलत काम, पॉल्यूटेड इंटेलिजेंस को जो दुनियादारी में हम सुनते हैं। देखो अर्जुन की चॉइस आसान नहीं थी, लेकिन सही चॉइस थी। सही टाइम पे सही काम करना हमें भगवत गीता सिखाती है फ्रेंड्स, है ना। तो जब भगवत गीता का ज्ञान मिला अर्जुन को, तो उसने सही चॉइस की। उसको लगा कि जो भगवान समझा रहे हैं मुझे, मुझे उस रास्ते पे चलना है, बजाय कि जो मेरा मन मुझे बता रहा है ना, मुझे वो उस रास्ते पे नहीं चलना। तो सदाचार मतलब आप सच्चाई पर चलने वाली अच्छी डिफिकल्ट चॉइसेस लोगे, जिस पर इनिशियली मुश्किलें आएंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको एक अलग तरह की रिस्पेक्ट भी देंगे लोग, और एक अंदरूनी लेवल का आनंद भी आपको मिलेगा जो आप किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। दूसरी चॉइस में आप डिग्रेड हो रहे थे, इनिशियली आपको प्लेजर मिल रहा है ना, इस पर आपको इनिशियली मुश्किलें आती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको लोग एक्सेप्ट भी करते हैं और बाद में रिस्पेक्ट भी करते हैं और फिर फॉलो भी करते हैं। आपको पहले तो निंदा ही होगी, है ना, इस रास्ते में चलने से भी निंदा होती है फ्रेंड्स, टोंट बजते हैं, है ना, लेकिन फिर क्या होता है, लॉन्ग टर्म में लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और फिर फॉलो भी करते हैं, है ना। और हिस्ट्री फ्रेंड्स वही लोग बनाते हैं जो सतमार्ग पर चलते हैं, और साथ साथ में आप भगवान के भी नजदीक जाते हो, उनके फेवरेट बनते हो। सबसे बड़ी बात है, देखो इस बात को बड़े ध्यान से समझो, जब हम कहते हैं रहते हैं ना, बच्चों को भी कहते हैं इवन, है ना, अपने आसपास के लोगों को भी कहते हैं अपना बिहेवियर अच्छा करो, पहले अपना बिहेवियर अच्छा करो, तो क्या अच्छा हो जाता है? हो गया किसी का अच्छा बिहेवियर हमारे बोलने से, या कोई हमें भी बोलता है अपना बिहेवियर अच्छा करो, अपना बिहेवियर अच्छा करो, तो क्या हो जाता है? या किसी को बोला जाए कि डिप्रेशन में मत जाओ, तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए, है ना, तो क्या बड़े बड़े लाउड स्पीकर भी लगवा दो तो क्या बिहेवियर अच्छा हो जाएगा या डिप्रेशन नहीं होगा किसी दूसरे व्यक्ति को? ये बस इग्नोरेंस है, अज्ञान है फ्रेंड्स। हमें कारण ही पता नहीं होता है कि बिहेवियर गलत क्यों हो रहा है, क्यों डिप्रेशन आ रहा है, इसके कारण बाहरी है या अंदरूनी है ना, ये हमें पता नहीं होता। देखो फ्रेंड्स, अगर गाड़ी का इंजन खराब है तो गाड़ी तो खराब ही चलनी है ना। वैसे ही अगर हमारे दिमाग के अंदर वासनाएं हैं, ईर्ष्या है, बदले की भावना है, तो बिहेवियर कैसे अच्छा होगा हमारा। अंदर इतनी गंदगी भरी पड़ी है, भिन्न भिन्न प्रकार की वासनाएं हैं, ईर्ष्या है, लोभ है, लालच है, बदले की भावना है, मोह है दुनिया में भर भर के, है ना। तो बिहेवियर कैसे अच्छा हो सकता है हमारा। अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है तो हम किसी को सुखी देख ही नहीं पाते। हम लोग अपने दुखों से दुखी नहीं है फ्रेंड्स, हम लोग दूसरों के सुखों से ज्यादा दुखी हैं। हमें लगता है दूसरों को ये चीज कैसे ज्यादा मिल गई मेरे से ज्यादा, इससे हम दुखी रहते हैं, है ना। तो बिहेवियर कैसे अच्छा होगा, पूरे बिहेवियर का कारण ना फ्रेंड्स अंदर होता है हमारे अंदर। ये जो नेगेटिव विकार होते हैं ना हमारे अंदर, डेमोनिक क्वालिटीज होती हैं जो, ये होती है हमारे अंदर। लेकिन वो बुरा बिहेवियर फिर दिखता बाहर है, है ना। उसका बीज जैसे पौधा दिखता बाहर है, लेकिन उसके अंदर बीज है ना जिसके कारण वो बाहर आता है। इसी प्रकार जो हमारी जो बीज है ना बुरे बिहेवियर का, वो हमारे अंदर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच के रूप में उसका बीज तो अंदर है, लेकिन वो दिखता बाहर है। कई बार हम दिखाते हैं, कई बार नहीं भी दिखाते हैं, लेकिन वो वाइब्रेशन से हम मैच कर पाते हैं, है ना। उस व्यक्ति से हमें नेगेटिव वाइब्रेशन ही आती है। अगर उसके अंदर विकार है तो उसके बाहर भी वही रहता है फ्रेंड। तो उसके अच्छाई और बुराई के बीच उसके अंदर है, जिसको हम अंदरूनी कुरुक्षेत्र भी कहते हैं। तो अगर हम अंदर से सुधरेंगे ना फ्रेंड, तभी हम बाहर से सुधरेंगे। तो जो लोग ऐसी बातें बोलते हैं ना, पहले बिहेवियर सुधारना चाहिए, है ना, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, है ना। तो देख लो कितने लोगों का बिहेवियर सुधरता है, कितने लोग डिप्रेशन से बाहर आ पाते हैं। इस बात पर इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि आज के दुनिया में फ्रेंड देखो, वकील, डॉक्टर बहुत सारे हैं, मतलब हर एक प्रोफेशन के लोग हैं। तो क्या वो एजुकेटेड नहीं है? लेकिन हमें पता ही है ना कि कुछ डॉक्टर्स गड़बड़े भी करते हैं, वकील रिश्वत लेते हैं पैसा कमाने के लिए, डाइवोर्स भी करवा देते हैं, है ना। तो इतने सारे लोग इतनी एजुकेशन भी ले रहे हैं, तब भी सबका बिहेवियर अच्छा क्यों नहीं हो रहा फ्रेंड्स। जरूरी नहीं है कि एक डॉक्टर और एक वकील, अगर वो इतना पढ़ गया तो उसका बिहेवियर बहुत अच्छा हो। जैसे एक डॉक्टर को कहा जाए अच्छी सर्जरी करो, अच्छी सर्जरी करो, किताबें पढ़ने की क्या जरूरत है, है ना। जैसे अगर आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो क्या सीधे ही आप प्रैक्टिकल करते हो या कुछ थ्योरी भी करते हो, है ना। तो आप कोई मेडिकल कॉलेज में आकर बोले कि क्या किताबें पढ़ाते रहते हो इनको, है ना, सिर्फ अच्छा डॉक्टर बनो, अच्छा डॉक्टर बनो, तो वो अज्ञान है ना। उसको समझ ही नहीं है कि अच्छा डॉक्टर बनने के लिए स्टेप्स होते हैं, अच्छे इंजीनियर बनने के स्टेप्स होते हैं, किसी भी प्रोफेशन में जाना है तो उसके स्टेप्स है ना, टीचर भी बनना है तो उसके भी स्टेप्स है। तो अगर किसी ने सत्संग नहीं किया, उसने भगवत गीता जैसे शास्त्र नहीं समझे, तो उसको पता कैसे चलेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी क्वालिटीज डिवाइन होती हैं और कौन सी डेमोनिक क्वालिटीज होते हैं, मतलब कौन से दिव्य गुण होते हैं और कौन से राक्षसी गुण होते हैं, कौन से ऐसे गुण है जो हमें हमारे अंदर से डिलीट करने हैं और कौन से ऐसे गुण है जो हमें बढ़ाने हैं। तो सत्संग मतलब किसी भी कॉलेज में एक थ्योरेटिकल लेवल होता है ना, तो पहले वो थ्योरी ही हमें सत्संग से मिलेगी। तो सत्संग करने से हमारी बुद्धि में विवेक आएगा कि ये सही है, ये गलत है। नहीं तो गलत सही आप अपने दोस्तों के मापदंड से करते हो, अपने रिलेटिव के मापदंड से करते हो कि मेरे रिलेटिव ने ये किया, मेरे फ्रेंड ने ये किया और वो ऐसा कर रहे तो मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, है ना। तो क्या वो लोग गलत कर रहे हैं तो क्या हम भी गलत कर दे? एटलीस्ट सत्संग किया होगा तो समझ होगी कि नहीं, ये सही है और ये गलत है। ये दुनियादारी की परिभाषा नहीं है फ्रेंड्स, प्रभु जो बता रहे हैं वो एब्सोल्यूट परिभाषा है जो कभी नहीं बदलती। क्योंकि दुनियादारी की परिभाषाएं तो समय के साथ और लोकेशन भी अगर बदलोगे ना तो बदल जाएगी। इंडिया की परिभाषा अलग है तो अमेरिका की परिभाषा अलग है ना, वहां का लिविंग स्टाइल डिफरेंट है और इंडिया की लिविंग स्टाइल डिफरेंट है। लेकिन अगर आपने सत्संग कर लिया तो आपको एब्सोल्यूट ट्रुथ, मतलब परम सत्य की परिभाषा पता चल जाएगी कि ये जीवन है, इस तरह से हमें चलना है, इसलिए सत्संग है। अब सत्संग तो हो गया, थ्योरेटिकल तो हो गया, अब आप साधना करोगे, प्रैक्टिकल करोगे। मतलब सत्संग से आपको गुड नॉलेज पता चल गई कि अच्छा ये करना है ना, आपको ज्ञान मिला, नॉलेज मिली कि अच्छा ये करना है मुझे, तो आप सेंस कंट्रोल कैसे लाओगे, विल पावर कैसे लाओगे, डिटर्मिनेशन कैसे लाओगे। देखो फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल लाइफ में ना सत्संग की बातों को उतारने के लिए सेंस कंट्रोल डेवलप करना पड़ेगा, विल पावर डेवलप करनी पड़ेगी। लेकिन होगा कैसे? वहां पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, साधना का रोल आता है। एक दो दिन से नहीं होगा कुछ भी, 10-15 दिन से भी कुछ नहीं होगा। जब आप लंबे समय के लिए हरिनाम करोगे, आप भोग लगाओगे, व्रत करोगे, भगवत गीता पढ़ोगे, अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ोगे, तो ये अलग अलग तरह के विधि विधान जो हमारे शास्त्रों ने हमें बताए हैं, ये हम करते रहेंगे, तो फिर जो बातें आप सत्संग से सीख रहे हो ना, वो बातें धीरे धीरे प्रतिशत में, तब भी ऐसा नहीं होगा कि सारा कुछ एक दिन में ही सीख लोगे, वो बातें धीरे धीरे अपने जीवन में उतार पाओगे। आप मटेरियली भी देखो ना, एक बच्चे को डिग्री लेने के लिए कम से कम नहीं तो 24-25 ईयर्स लग जाते हैं एजुकेशन में, कि एक व्यक्ति नर्सरी क्लास से शुरू होता है और फिर 25 साल लग जाते हैं उसको, 24-25 साल एक जॉब के लिए, एक डिग्री लेने के लिए, है ना। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में अज्ञान है लोगों का। अगर एक व्यक्ति सत्संग करता है तो 10-15 दिनों में ही दूसरे व्यक्ति को अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा तो वो कमेंट मार देगा। अगर हस्बैंड कर रहा है तो वाइफ कमेंट मार देगी, वाइफ कर रहा है तो हस्बैंड कमेंट मार देगा कि क्या फायदा हुआ तुम्हारा ऐसे सत्संग का, पहले तुम अपना बिहेवियर तो सुधारो अपना। 10-15 दिन नहीं हुए होंगे सत्संग लगाते हुए और लोग हमें असेस करना शुरू कर देते हैं कि 10-15 दिन में ही बस कुछ ऐसा भगवान कोई चमत्कार कर देंगे। तो पहले सत्संग आएगा, फिर साधना आएगी, फिर धीरे धीरे सेवा में भी आओगे आप। स्वार्थ से निस्वार्थ तक जाने के लिए आपको सेवा नहीं करोगे, अगर सिर्फ बोलते रहोगे कि अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, बोलने से कुछ नहीं होगा। अच्छे कामों के लिए फ्रेंड्स कुछ करना पड़ता है। तो सत्संग, साधना, सेवा करोगे, सेवा आप अनाथालय जा सकते हो, वृद्धाश्रम जा सकते हो, है ना, अपने घर में जो हेल्पर्स आते हैं हमारे उनकी हेल्प कर सकते हो, बहुत सारे सेवा के अपॉर्चुनिटीज मिलती है फ्रेंड्स, अगर हम अपने अवेयरनेस के साथ चलेंगे तो, है ना। तब आपको अनुभव होगा कि हम कितने ब्लेस्ड है और आपके बिहेवियर में चेंज आता है, और जब सदाचार आता है ट्रू सेंस में आपके जीवन में, है ना, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू कर देते हैं कि यार कितना कुछ दिया प्रभु ने मुझे। जब सदाचार हमारे जीवन में आता है, खाली बातें करने से अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, इससे कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। अब सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा होता है ना, सिगरेट इज इंजरीज टू हेल्थ, लिखा होता है ना उस पे, लेकिन लोग तो लेते हैं और पढ़ते भी नहीं है, पढ़ते भी हैं तो ध्यान नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स खाली बताने से नहीं होगा, नॉलेज तो है, खाली नॉलेज से कुछ नहीं होगा ना, लेकिन तो अच्छा बिहेवियर उसके लिए हमें सत्संग, साधना, सेवा करना पड़ेगा। इसको एक तरह से और तरह से समझते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, पूजा पाठ वो कर रहा है, बट जरूरी नहीं है कि वो स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा हाई होगा फ्रेंड्स। इस बात को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। आपको दिखते होंगे ऐसे लोग कि जो मंदिर जा रहे हैं, डेली 2 टाइम मंदिर जाएंगे, बहुत पूजा पाठ करेंगे घर में, बट जरूरी नहीं होता कि फ्रेंड्स वो स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा हाई होंगे। स्पिरिचुअली हाई होने का मतलब ही ये है कि किसी का प्रैक्टिकल कंडक्ट में बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है। जस्ट बिकॉज कि कोई पूजा पाठ कर रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि वो स्पिरिचुअली बहुत हाई है। स्पिरिचुअली हाई होने का मतलब है कि आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है सबके साथ, आप ईर्ष्या नहीं करते हो, आप सबके साथ हेल्पफुल एटीट्यूड रखते हो, तब स्पिरिचुअली हाई है। जो हमारे डेमोनिक क्वालिटीज है वो परसेंटेज में कम होती है, तब हम स्पिरिचुअली हाई होते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो 2 पॉइंट है, एक की जो लोग पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी उनका बिहेवियर खराब होता है, तो फिर ये प्रश्न आ जाता है कि ऐसी पूजा पाठ का क्या फायदा। पहले इसको थोड़ा समझते हैं कि लोगों का ये जो प्रश्न होता है, देखिए एक छोटा बच्चा है, है ना, तो वो चलना शुरू करता है तो पहले लड़खड़ाता है, गिरता है, तो जब वो गिरता है तो माँ बाप उसको बोले यार क्यों कर रहा है मेहनत, क्या फायदा। तो क्या पेरेंट्स हम लोग ऐसा बोलते हैं? एक्चुअली हम लोग क्या ना, एक सोल की जर्नी को नहीं समझ पाते, इसलिए हम सारी बातें ना मिक्स कर देते हैं, है ना। तो हम किसी की उम्र देखते हैं तो लगता है कि वो 15-20 साल से पूजा कर रहा है, बट इसका बिहेवियर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और फिर वो भी हमारी असेसमेंट होती है, क्योंकि हम बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं फ्रेंड्स। अगर कोई सच में किसी का बिहेवियर अच्छा है या नहीं तो वो तो भगवान ही बता पाएंगे। अगर कोई हमारे साथ अच्छा कर रहा है तो हमें लगेगा बड़ा अच्छा है, तो भी हमारी असेसमेंट होती है, और वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सच्ची हो वो बात। और दूसरी बात, हर एक व्यक्ति अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की एक स्टेज में है, कोई 4th में है, कोई 5th में है, और कोई क्लास 10th में है। ये भी जरूरी नहीं है कि जो सत्संग साधना सेवा कर रहा है तो वो जरूरी है वो सच में ही कर रहा होगा या डीपली जुड़ गया है भगवान के साथ, है ना। तो मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं, सिर्फ भगवान को पता होता है कि कौन इस रास्ते में चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है, चाहे वो सत्संग साधना सेवा के साथ रास्ते पे ही क्यों ना चल रहा हो, है ना। तो जैसे क्लासरूम में 100 बच्चे हैं, तो क्या हम किसी के मन के अंदर जो चल रहा है वो हम झांक कर बता सकते हैं कि कौन क्वालिटेटिव कर रहा है और कौन पेरेंट्स के प्रेशर में बैठा है यहाँ पर, है ना। तो हम लोग पता नहीं कर सकते इस बारे में। और देखो अगर सत्संग में भी कोई अगर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो, अगर वो सत्संग को अटेंड कर रहा है तो वो सुन भी रहा है उसको ध्यान से। सत्संग में जाने से कोई स्पिरिचुअली एडवांस थोड़ी हो जाएगा, है ना। जैसे बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जाते हैं, है ना। सबका अपना अपना स्टेज है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, हमें ये सोचना है हम क्या कर रहे हैं, है ना। और अगर कोई सच में डीपली सत्संग करेगा तो उसके अंदर तो इम्प्रूवमेंट तो आनी ही आनी है फ्रेंड्स। ध्यान से सुनेगा सत्संग की बातों को, इम्प्लीमेंट करने की तरफ अपने कदम बढ़ाएगा तो उसके अंदर तो इम्प्रूवमेंट तो आना ही आना है ना, कोई शक ही नहीं है इसमें। लेकिन हमें नहीं पता होता कि वो कहाँ था। मान लीजिए क्लास फोर्थ वाला बच्चा मेहनत कर रहा है तो अगर वो ध्यान से सत्संग सुनेगा, इम्प्लीमेंट करेगा चीजों को, तो वो क्लास फिफ्थ में आ जाएगा। और मान लो एक बच्चा टेंथ क्लास में है तो उसको क्या लगेगा कि दूसरे का गलत बिहेवियर देखकर उसको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, इसका लेवल तो कुछ भी नहीं है, इसकी एजुकेशन कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है वो बचपन से ही वो सही दिशा में चल रहा है, सही चीजें कर रहा है, तो ऑलरेडी वो क्लास टेंथ में आ चुका है। तो जब वो देखेगा दूसरे पर्सन को कि जो पूजा पाठ तो कर रहा है बट उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो वो टेंथ क्लास वाला बच्चा क्या कहेगा कि इसका फायदा ही क्या है फिर। बट सच ये होता है फ्रेंड्स कि वो क्लास फोर्थ वाला बच्चा कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता हुआ क्लास फिफ्थ तक तो आ गया, तो उसकी इम्प्रूवमेंट हुई ना इस रास्ते में, हुई है, बिल्कुल हुई है। बट क्लास टेंथ वाले बच्चे को ये समझ नहीं थी, उसको लगेगा कि ये है तो ये क्लास फिफ्थ में ही ना। टेंथ क्लास वाले बच्चे को उसको इम्प्रूवमेंट कब दिखेगी, जब कोई उसके अगले लेवल के व्यक्ति उसको दिखेगा, तब उसको डिफरेंस दिखेगा अपने में और उस व्यक्ति में। अपने नीचे वाले व्यक्ति को वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जब हम अपना कंपैरिजन या इन स्पिरिचुअल टॉपिक्स को लेकर दूसरों के बिहेवियर से असेस करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमें करेक्ट आंसर्स कभी मिल नहीं पाएंगे फ्रेंड्स। हम जजमेंटल हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है, है ना। तो सच तो ये है कि जब कोई सत्संग साधना सेवा करेगा तो वे जहां पे था ना वो वहां से एक बेटर पर्सन बन जाएगा। सिंपल, मान लो पहले उसमें 1000 कमियां थी उसके अंदर, और अब वो सत्संग साधना सेवा कर रहा है, अब उसके अंदर 10% कमियां कम हो रही है। 6 महीने साल से वो सत्संग साधना सेवा के रास्ते में चल रहा है, भगवद गीता सुन रहा है, तो अब उसके अंदर 10% कमियां कम हो रही हैं, है ना। तो अब आप देखो कि मेजोरिटी लोग उस 10% घटी कमियों को देख पाएंगे, ये आज भी उसके अंदर लोगों को कमी ही दिखेगी, है ना। फिर वो टॉन्ट मारेंगे कि सत्संग साधना सेवा का क्या फायदा हुआ, है ना। जैसे एक बच्चे को मान लो 104 बुखार था, डॉक्टर ने दवाई दी, माँ ने उसको चेक किया, उसका बुखार 103 में आ गया, लेकिन दुनिया क्या कह रही है, उस दवाई का क्या फायदा हुआ, कोई असर तो हुआ नहीं, है ना। तो माँ को तो डीपली दिख रहा है क्योंकि उसने थर्मामीटर से चेक किया कि टेम्परेचर तो घट रहा है, तो वो तो डॉक्टर को अप्रिशिएट करेगी ना। फिर दुनिया चाहे करे ना करे, लेकिन वो तो डॉक्टर को अप्रिशिएट करेगी कि भाई दवाई दी तो उसका टेम्परेचर डाउन होने शुरू हो गया। लेकिन बाकी लोगों को समझ नहीं, हमारे अंदर फ्रेंड्स हजारों कमी है, वो कम हो रही है, वो सिर्फ हमें दिखेंगी और किसी को नहीं दिखेंगी। और जो सच में स्पिरिचुअली एडवांस होगा उसको समझ आ जाएगी ये बातें, है ना। उसको समझ आएगी कि अगर मैं गुस्सा महीने में 10 बार करती थी और पूजा पाठ करके वो गुस्सा मेरा महीने में 5 बार रह गया, तो क्या मैं सुधर रही हूँ इस रास्ते में या नहीं, है ना। तो ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट हो रही है ना। तो हमें समझ आ जाती है कि भाई पिछले महीने में मैंने कितना गुस्सा किया, अपने असेसमेंट खुद से ही हो जाती है, लेकिन कोई दूसरा हमारी असेसमेंट नहीं कर सकता फ्रेंड्स। हम लोगों को पूछते रहेंगे ना, क्या मेरी आदतों में कुछ सुधार हुआ, क्या मुझ में कुछ सुधार हुआ, तो हमें कहीं से भी पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिलने वाला। तो हमें किसी से भी असेसमेंट नहीं करवानी, हमें अपनी असेसमेंट खुद ही करनी है या परमात्मा करेंगे हमारी असेसमेंट, है ना। और हमारे दिमाग में क्या होता है फ्रेंड्स, महापुरुष वाली इमेज होती है कि जब तक कोई महापुरुष नहीं बन जाता कि कोई हर वक्त ही स्माइल कर रहा है, कभी गुस्सा नहीं आएगा उसको, तब तक हम उसको इम्प्रूवमेंट नहीं मानते। हम क्या करते हैं कि जो भक्ति के रास्ते में चल रहा है वो बस महापुरुष बन गया, है ना, अब वो कभी गुस्सा नहीं करेगी या कभी वो निंदा चुगली नहीं करेगी। अरे आप ये देखो ना कि उसका अगर परसेंटेज में उसमें बदलाव आ रहा है, है ना, तो इम्प्रूवमेंट हो रही है ना। अगर 5% भी बदलाव आ गया, किसी को 6 महीने साल से कोई सत्संग सुन रहा है, अब उसको लगता है कि यार नहीं यार मुझे गुस्से का संस्कार मुझे छोड़ना चाहिए, इससे मेरे की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, या मुझे निंदा चुगरी का संस्कार है, सच में मैं उससे बहुत डाउन फील करती हूँ, है ना। तो आप जब आपके मन में ये बात आ जाती है ना कि सच में मेरे में ये बैड हैबिट है, ये नेगेटिव हैबिट है, तो आप उसको फिर उस पे वर्क करते हो। जब आपको पक्का हो जाता है ना अंदर से कि मेरे को ये नेगेटिव हैबिट्स है और मुझे इससे छुटकारा पाना है, तो फिर आप उस पे वर्क करते हो। जब छोटी छोटी कमियों पे आप वर्क करते हो ना फ्रेंड्स, तो आपको बहुत आनंद आता है। आप सोचो, आप में मान लो आप में गुस्से का संस्कार है ना, तो आपका वो गुस्से का संस्कार कम हो जाएगा या खत्म होने लगेगा, तब आपको मजा आएगा कि उस गुस्से से चलते हुए लाइफ जीने में मजा आएगा। खुद सोच के देखो, कोई भी संस्कार है, मान लो गुस्से का, लालच का, निंदा चुगली का, कुछ भी जो हमें पता होता है, अलग अलग प्रकार के संस्कार होते हैं हमारे अंदर, नेगेटिव हैबिट्स होती हैं, है ना, तो किससे मजा आने वाला है? कि वो जब उन कमियों को हम ओवरकम कर लेते हैं तब आनंद आएगा, या फिर उन कमियों के साथ हम जीवन जीते हैं और पूरा एक बहुत लाइफ स्पैन हमने जिया होता है इन कमियों के साथ, इसलिए हम फिर दुखी रहते हैं, फिर हमें लगता है कि यार हमारे जीवन में दुख बहुत है, हमारे जीवन में सुख नहीं, और 99.9% बीमारियां हमने खुद बनाई होती है अपनी मन की। जब भगवत गीता पढ़ते हैं ना तो हमें सब समझ आ जाते हैं, मतलब मन की बीमारियां हमारी दूर हो जाती है फ्रेंड भगवत गीता पढ़ने से, मन से हम बीमार नहीं रहते कम से कम। और फिजिकली भी कोई प्रॉब्लम हो तो उस पे वर्क करने के बारे में सोचते हैं, कैसे इसको मैं ठीक कर सकती हूँ, कैसे मैं अपनी सेहत को सुधार कर सकती हूँ, कैसा मुझे अपना खाना पीना करना चाहिए ताकि मैं अपना फिजिकली अपना बेटर फील करूं, है ना, उस पे वर्क करते हो आप। जबकि मेंटल हेल्थ पे वर्क होता है तो अपने आप ही फिजिकली हेल्थ पे वर्क होना शुरू हो जाता है फ्रेंड्स, है ना। तो मतलब एक 40% वाले बच्चे के 50% नंबर आ जाएं तब हमें इम्प्रूवमेंट ही नहीं मानते उसकी। किसी के 10% 5% भी अगर कमियां कम हुई हैं भगवद गीता सुनने से या सत्संग लगाने से या कोई अच्छी बुक्स पढ़ने से, तो हम उसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, है ना। हम ये समझते नहीं है कि वो कहाँ थी, हम उसको हमेशा 100% से ही कंपेयर करेंगे। देखो जो 40 से 50% तक पहुंचा उसको अगर 100% से कंपेयर करोगे तो लगेगा कि ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कुछ नहीं कर पाया ये, मतलब कुछ भी उसको डिफरेंस दिखेगा ही नहीं 40 से 50% तक कोई पहुंचा। लेकिन अगर हम उसको 100% से कंपेयर करेंगे तो हमें लगेगा कि ये तो इसने तो कुछ सीखा ही नहीं, अगर कोई स्पिरिचुअली एडवांस व्यक्ति नहीं है वो उसको असेस कर रहा है तो, है ना। बस सबकी इंप्रूवमेंट की स्पीड और चेंजेस सबके अपने अपने अकाउंट है फ्रेंड्स, है ना। हमें वो नहीं सोचना है, बस ये ध्यान देना है कि हम जहां हैं उससे आगे बढ़े। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि भी मुझे कल से आज को बेटर करना है, फिर कल जब आएगा उसको फिर आज से बेटर करना है, अपने आप को डे बाय डे बेटर करते जाना। और होगा कैसे, जब हम सत्संग साधना सेवा के रास्ते में चलेंगे, और दूसरे को जज करना, कंपैरिजंस करना, और ये बातें सोचना कि वो ये करती है वो करता है, है ना, इसकी तो इम्प्रूवमेंट हुई नहीं, है ना, ऐसी बातें करना भी सदाचार नहीं है, है ना। और फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये भी सोचते हैं कि कोई आज हमें पूजा पाठ करते हुए नहीं दिखता, या कोई माला जाप नहीं करता, या विधि विधानों को फॉलो नहीं करता, तो हम क्या कह देते हैं, ये स्पिरिचुअल नहीं है। लेकिन जिसका बिहेवियर बहुत अच्छा है और समाज कल्याण के वो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो बेशक पूजा पाठ नहीं कर रहा है, कोई विधि विधान के नियम नहीं फॉलो कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति फ्रेंड्स बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली एडवांस्ड होता है। एक्चुअली वो टीचिंग्स पे चलता है भगवत गीता की, है ना। और हमें क्या लगता है कि जो माला जाप कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली एडवांस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और फिर ये भी हो सकता है कि अब वो व्यक्ति बोले कि मैं तो अच्छे कार्य करता हूँ, मुझे सत्संग साधना सेवा माला करने की या पूजा करने की क्या जरूरत। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी कैसे गलत हुई कि पहली बात तो वो अच्छा कर रहा है, मान लो अगर वो भलाई करता है, उसका बिहेवियर अच्छा है, तो ऑलरेडी उसके बिहेवियर में बड़ी पॉजिटिविटी है। लेकिन अगर आप बताइए कि दुनियादारी में एक व्यक्ति अगर 1,00,000 रुपए कमाता है तो इंसान क्या बोलता है कि बहुत है, या कि वो सोचता है कि मैं 2,00,000 कैसे कमाऊं, है ना। तो यही बिहेवियर, यही डिससेटिस्फेक्शन हम गुड कंडक्ट में हम नहीं लाना चाहते, है ना, कि मुझे इससे भी बेटर बनना। हम क्यों नहीं सोचते कि मैं अच्छी तो हूं, लेकिन क्यों ना मैं सत्संग साधना सेवा अपने अंदर के करेक्टर को एक डिफरेंट डायमेंशन पर क्यों ना लेकर जाऊं, मैं क्यों ना और हम्बल, क्यों ना पोलाइट, और क्यों ना और अच्छी बनूं, है ना। और ये तो हमारी ईगो आ जाती है कि हम तो बड़े अच्छे हैं, कि मैं तो ऑलरेडी बेटर ही कर रही हूँ, मुझे क्या जरूरत है इन सब चीजों की, है ना। तो हम इन सब चीजों को फ्रेंड्स अलग अलग देखते हैं, सत्संग अलग, साधना अलग, सेवा अलग, अच्छा बिहेवियर अलग। तो यही तो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है फ्रेंड्स। हम स्पिरिचुअलिटी को इंटेग्रल चार चीजों को जोड़कर क्यों नहीं देख पा रहे हैं। सत्संग भी उसका पार्ट है, जैसे थ्योरी में नॉलेज लेना एक डॉक्टर बनने का पार्ट है ना, है ना। अपने सीनियर्स के साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस करना भी डॉक्टर बनने का पार्ट है ना। थोड़ी देर फिर मेडिकेशंस कौन सी होती है, कौन से साइड इफेक्ट्स हैं, ये भी डॉक्टर बनने का पार्ट है। कॉन्फ्रेंसेस में जाना भी डॉक्टर बनने का पार्ट है, कुछ अलग नहीं है ये। वैसे ही गुड ह्यूमन बीइंग बनने के लिए सत्संग साधना करोगे, और अगर आप अच्छे इंसान हो, अगर आप ऑलरेडी 80 पर पहुंच गए हो, है ना, तो आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि मैं 90 पर पहुंचूं। सत्संग साधना सेवा करोगे तो आप आपकी प्रोग्रेस की जो स्पीड है ना और बढ़ जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी अच्छे हो, है ना। और फिर जो अच्छे लोग इस रास्ते में चलते हैं, समझ के चीजों को करते हैं, उनकी प्रोग्रेस बहुत जल्दी होती है। क्योंकि फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली अच्छा इंसान नहीं होता, परमात्मा के अलावा कोई भी परफेक्ट नहीं है। कोई भी कितना भी अच्छा इंसान क्यों नहीं हो, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ विकार होते हैं। और दूसरा, उसको अपने अंदर अच्छाई का अहंकार भी आ सकता है कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, है ना। जो ऑलरेडी सोचता है कि मैं ऑलरेडी अच्छी हूँ, बट उसको ये समझ नहीं है कि उसका सूक्ष्म लेवल का अहंकार उसके अंदर आ गया है कि मैं तो ऑलरेडी बहुत अच्छी हूँ। तो जब वो सत्संग साधना सेवा करेगी तो समझ आ जाएगा कि अगर हम अच्छाई भी करते हैं तो हम निमित्त मात्र, हमें घमंड नहीं कर लेना है, हमें सोचना है कि मैं निमित्त मात्र हूँ, प्रभु मुझसे करवा रहे हैं। तो अगर वो अच्छे काम कर रही है, अच्छाई कर रही है, तो अच्छाई से आने वाले सूक्ष्म अहंकार से बच जाएगी, है ना। अगर वो कोई व्यक्ति प्रभु से नहीं जुड़ा तो उसके अंदर इस बात का अहंकार आ जाता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, है ना। और एक बार और होती है कि कई बार हम अच्छा तो कर रहे होते हैं बट पीछे से लोग बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं, कुछ बुरा कह देते हैं, है ना। और मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने हेल्प की दूसरों की, बट जब आपको जरूरत पड़ी तो आपको हेल्प नहीं मिली उससे, है ना। तो कई बार लोग अच्छे होते हैं, सदाचारी होते हैं, लेकिन उनके साथ जब नेगेटिव बिहेवियर होता है तो बाद में वो विलियन का रोल भी प्ले कर देते हैं कई बार, कि समाज ने मुझे क्या दिया, कि मुझे भी अब इनके साथ वैसा ही बिहेव करना है। तो फिर फर्क क्या हुआ उस व्यक्ति में और हम में, अगर हम इस तरह का बिहेवियर करते हैं, अगर हम बदले की भावना रखते हैं मन में, है ना। तो अगर हम सत्संग साधना सेवा करते रहेंगे तो हम किसी से फिर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, ना लोगों से ना समाज से, है ना। तो हमें इस बात समझ आ जाती है कि हम जो गुड बिहेवियर करते हैं वो गुड बिहेवियर दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करना है। मुझे अपना गुड बिहेवियर इसलिए करना है ताकि प्रभु से मेरा रिश्ता सुधरे, प्रभु मुझसे कैसे खुश हूँ, इसलिए मुझे करना। एक बार मदर टेरेसा ने भी बहुत अच्छी लाइन कही थी कि जब आप भलाई के रास्ते पे, अच्छाई के रास्ते पे चलते हो ना, तो बड़े लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपके इंटेंशंस पे डाउट करेंगे, तब भी आप चलते रहो, समाज का भला करते रहो। आप हमेशा ये बात याद रखो कि आप समाज का भला किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, ये आपका और प्रभु का रिश्ता है और आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभु को खुश करना है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, घर घर मंदिर हर मन मंदिर, एवरीवन हरि बोल। तो फ्रेंड्स, आप रिव्यूज की तरफ चलते हैं कि आज के सत्संग से आपने क्या सीखा या आपके कोई एक्सपीरियंसेस है तो आप शेयर कर सकते हो। फ्रेंड्स, हरी बोल।
हरी हरी बोल एवरीवन। संजीव जी, हमेशा की तरह आज का सत्संग भी बहुत ही डिवाइन था और आपने आज हमें सदाचार के बारे में बताया। तो हमने मतलब मेन अध्यात्म के चार स्तंभ सत्संग साधना सेवा और सदाचार इस टॉपिक को आपसे समझा और इसमें मेरी ये लर्निंग्स बनी है कि जब हम सत्संग साधना सेवा और सदाचार करेंगे तो तभी फ्रेंड्स हमारे जीवन में जो है सदाचार पन होगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम देखते हैं कि कोई भी एबीसी पर्सन ये बोले कि मतलब उसको लगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ सबके लिए, तो फ्रेंड्स अब हम भगवद गीता के स्टूडेंट हैं तो हम इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है सूक्ष्म लेवल का अहंकार, यानी वो अपने आप को कर्ता मान रहा। और हमने अपने मोना जी के सत्संग में ये समझा कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रभु को ये पसंद नहीं है। क्योंकि अगर हमें लगता है कि हमारा बिहेवियर बहुत ही अच्छा है और मैं ही परफेक्ट हूँ क्योंकि मैं सबका भला करता हूँ, तो इसलिए मतलब उस पर्सन में जो है सूक्ष्म लेवल का अहंकार आ जाएगा। परंतु फ्रेंड्स, वास्तव में हमने यहाँ इस बात को समझना है कि वो जो पर्सन है वो इस बात से अनभिज्ञ है कि उसके अंदर जो है अहंकार, यानी उसके अंदर अहंकार पैदा हो गया। तो इसका रीजन ये है कि उसने सत्संग साधना और सेवा और सदाचार को अपने मतलब जीवन में नहीं अपनाया। सदाचार तो है उसके जीवन में बट सत्संग साधना और सेवा नहीं, यानी वो अपने आप को निमित मात्र ना समझकर अपने आप को कर्ता मान रहा। और हमने इस टॉपिक में भी यही समझा कि हमें जो है जो काम करना है वो हमें निमित मात्र के भाव से ही करना है, क्योंकि तभी हमारे अंदर विनम्रता आएगी और जो है हम हमारा बिहेवियर अच्छा होगा, हम दूसरों के प्रति विनम्र होंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, तो यानी हमारा बिहेवियर जो है अच्छा होगा। और यदि हम इसी बात को अपने मन में लेके बैठे रहेंगे कि मैं तो सबके लिए बहुत अच्छा करता हूँ, तो इससे जो है फ्रेंड्स हमारे अंदर जो है सूक्ष्म लेवल का अहंकार अवश्य ही होता है तो जो है अपना फुल फोकस जो है सत्संग साधना सेवा पर करना है। और हमने इस टॉपिक में यही समझा कि सत्संग से हमें जो जो है मतलब प्रभु की बातों का गुणगान सुनने को मिलता है, यानी हम एक अच्छी नॉलेज गेन करते हैं। और इसके बाद सत्संग के बाद जब हम साधना पर भी फुल फोकस करते हैं, यानी जब हम अपना नाम जाप अर्चे विग्रह की पूजा आरती करना पूरी अपनी फैमिली के साथ, भोग लगाना हरे कृष्णा महामंत्र करना, ये सब जब करते हैं तो इससे फ्रेंड्स हमने हम सब मतलब जो डिवोटीज हैं इस सत्संग में हमने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि इससे हमारी विल पावर स्ट्रोंग हुई है, हमने अपने मन को साधने की कोशिश करी है, हमारे अंदर पेशेंस आई है, हमारे बिहेवियर में जो है चेंजेस आई है। तो इसके साथ अगर हमें अब हमने इस बात को भी समझा है कि अगर हमें कहीं सेवा का भी मौका मिलता है तो वो सेवा चाहे हमें तन से करनी पड़े, मन से या धन से, हमें पीछे नहीं हटना है, परंतु हमें ये जो सेवा करनी है ये भी इस भाव को अपने मन में लेकर करनी है कि मैं एक निमित्त मात्र हूँ, मैं एक माध्यम हूँ, प्रभु ने मुझे ये सेवा दी। तो फ्रेंड्स जब हम अपने जीवन में कहने का भाव ये है सत्संग साधना सेवा को लाएंगे तभी जो है हमारा प्रभु की हम गुड बुक्स में आएंगे और हमारा जो है बिहेवियर जो है वो अच्छा होगा, हम दूसरों के साथ अच्छा बिहेव कर पाएंगे और हमारे अंदर जो मेन बात है जो हमारा ईगो है वो बिल्कुल शून्य हो जाएगा। तो हमें बस प्रभु श्री हरि से यही प्रार्थना करनी है कि हम अपने जीवन में ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस रेगुलर करते रहें ताकि हम सदाचार की ओर बढ़े और हमें जो है पीस और परमानेंट हैप्पीनेस मिले और हम प्रभु की गुड बुक्स में आ सके। हरि बोल जी, हरि
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन नीना जी, आपने पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा दिया। और फ्रेंड्स हम अगर डीपली सोचे ना ध्यान से तो ये मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है सदाचार हमारे लाइफ का। सारी प्रॉब्लम्स ही हमारे यहाँ पे हम हमेशा दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर रखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है ना, लेकिन मुझे ये नहीं जानना है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए क्या कर सकती हूँ। हम यहाँ पे कुछ नहीं उसके लिए करेंगे है ना, उसमें हम अपना मनगढ़ंत जीवन जीते हैं है ना, अपने सदाचार को बेटर करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ है ना, मुझे अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना चाहिए है ना, और मैं क्या क्या मेरे में नेगेटिव क्वालिटीज है इस पे मैं कैसे वर्क कर सकती हूँ है ना। लेकिन जब हम सत्संग सुनते रहेंगे तो ये सारी चीजें हमारे अंदर घुसेंगी, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, स्पिरिचुअल लीडर्स को सुनते रहेंगे तो अपने आप समझ आती है कि मेरे को मैं कर क्या रही थी और करना क्या है मुझे, और मुझे सदाचारी जीवन पे चल के ही मैं खुश हो सकती हूँ, सुखी रह सकती हूँ, गलत चीजें करके मैं कभी भी खुश नहीं रहूंगी। फ्रेंड्स ये बात जब हमारे अंदर घुस जाती है ना अच्छे से तो अपने आप ही जीवन बेटर होने शुरू हो जाता है, हमें एक रास्ता दिख जाता है यार सच में मेरे को जो मैं गलत काम करती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ, गलत चीजें करती हूँ है ना, उससे मेरा जीवन अच्छे होने के बजाय और कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। करना क्या है, सिंपल अपने जीवन को सिंपल रखना है और सही चीज सही का साथ देना, सही डिसीजन लेने है ना, सदाचारी जीवन जीना है। तो अपने आप ही जब हम ये डिसाइड करते हैं तो अपने आप ही लाइफ में तो बेटर होना ही है फ्रेंड्स है ना। थैंक यू सो मच नीना जी। हाँ जी, कोई और है जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स? हरी बोल,
हरी हरी बोल नीना जी, हरी हरी बोल एवरीवन। आज का सत्संग भी क्या की तरह आनंदमय रहा, बहुत डिवाइन था। सदाचार हमारा बिहेवियर, पहले तो सत्संग और ये बिहेवियर सदाचार साधना सेवा ये सब हमें इन 2-2.5 सालों में पता चला रियल मीनिंग। सत्संग सुनने से ही हमारे अंदर अगर कुछ चेंज आती है, इम्प्रूवमेंट होती है, अगर हम आज खुद को कुछ भी देख पाते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं, कोई चैंटिंग माला कर लेते हैं, या आज कोई मेरे को बोलना ही नहीं आता था आज मैं थोड़ा बोल लेती हूँ या कुछ अच्छा पूजा पाठ कर सकती हूँ, तो वो इस सत्संग की वजह से, जो मोना दी नहीं मानते पर हम बोलते हैं मोना दी के सत्संग की वजह से, गोलोक की वजह से। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। तो सदाचार हमारा बिहेवियर, दूसरों के प्रति अगर हमारे मन में दया भावना है, किसी को दुख को देखकर अगर हमारे अंदर दिल भर आए, उसके प्रति दया आए और दूसरों की खुशी देखकर हमारे अंदर जलन नहीं हो, हमारा बिहेवियर सदाचार हमारा अंदर है। और ये सब बातें सत्संग से ही आती हैं, सत्संग डेली सुनना, रेगुलर सुनना और जो सत्संग में बोला जा रहा है वो अपने जीवन में उतारना, अप्लाई करना, स्पिरिचुअल पथ पे चलना, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना। जैसे कि मोना दी हमें बताते रहते हैं कि कुछ भी करो, आप खाना बना रहे हो, कोई भी ड्यूटी कर रहे हो, तो हरि को अर्पित करते जाना और हरि गुणगान करने के साथ ही होना, और यही सदाचार। आज मेरी इतनी लर्निंग बनी, हरी हरी बोल। थैंक्स मोना दी,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुली आपने बहुत सारे इस अपने एग्जांपल के साथ पूरे टॉपिक को अच्छे से समराइज कर दिया। थैंक यू सो मच किरण जी बिल्कुल, मतलब कि अगर हम सोच ले ना, देखो जो जो चीजें छोटी छोटी बातें, अगर मैंने बोला कि मैं अपने जब भजन लगा लेती हूँ, जब मैं खाना बनाती हूँ, है ना, या हरे कृष्णा महामंत्र लगा लेती हूँ दिन में, वो चलता रहता है, तो मतलब वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहती है। देखो मेरा माइंड तो जैसे हवा कितनी तेज भागती है, तो माइंड उससे भी तेज भागता है, तो माइंड ने तो भागना ही है, तो मुझे उसको एंगेज करना चाहिए। जब हमने सीख लिया भगवद गीता से, होगा कैसे वो, है ना, तो वो अब कोई जॉब करेगा तो वो जॉब के दूसरे काम कर रहा है, अपने घर से चला गया और वो अपनी दूसरी एक्टिविटीज कर रहा है, मतलब वो कैरियर से जुड़ी अपनी ड्यूटीज कर रहा है, तो उसका मन घर से निकल कर वो दूसरी एक्टिविटीज में चला गया, है ना। लेकिन जो घर में हाउसवाइफ होती है उसका, मैं जैसे मैं एक हाउसवाइफ हूँ, है ना, तो हमारा मन क्या होता है, बस वही चार पांच लोग होते हैं हमारे, हम उससे जुड़ी ही चीजें सोचते रहते हैं, वही सुनते रहते हैं, और हमारा कुछ भी आगे हमें कोई भी मतलब ज्ञान नहीं मिलता कहीं से। तो अभी हम घर में कहीं जा नहीं रहे हैं, बाहर हम जॉब करते नहीं है, है ना, तो या तो हम अपने आप को एंगेज करें कि कुछ हम पॉजिटिविटी वाली कोई चीजें कर रहे हैं, किसी को कुकिंग का शौक है, किसी को गार्डनिंग का शौक है, किसी को डांस का शौक है, तो वो वाली मैं बोल रही हूँ, जो जो आपको शौक था ना, कि आपको लगता था किसी को पढ़ाई का शौक है, है ना, किसी को लगता था कि मेरे को ये लाइफ में मेरे को करना चाहिए था, कोई भी एक चीज जो आपको लगता था कि चलो मुझे गार्डनिंग का या मुझे बेकिंग का, मुझे ये लाइफ में करना चाहिए था लेकिन मैं कर नहीं पाई, रिग्रेट रहता है हमें, है ना, लाइफ में। तो हमें, मुझे लगता है कि अब हम लाइफ के उस पार्ट में कि हमें वो चीजें सब कर लेनी चाहिए जो हमें अच्छी लगती हैं चीजें, मतलब जो पॉजिटिव चीजें हैं, यानी कि कुछ भी मनगढ़ंत चीजें जो भी हमें लगता है कि हमारा मन ने बोला कि ये कर लो तो वो कर लो, नहीं, जो हमें लगता था कि हमें कर लेनी चाहिए थी वो हमें कर लेनी चाहिए, है ना। और फिर जैसे हम अब गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े हैं, है ना, तो सत्संग साधना सेवा सदाचार इस मॉडल पे चले हैं, तो हमें साधना से रिलेटेड जो भी चीजें बोली जाती हैं, है ना, कि अपना भोग लगाओ, आरती करो, अब फैमिली के साथ मिलके एक टाइम का सोच लो, है ना, भगवान को तीन टाइम का भोग लगाओ, बच्चों को एंगेज करो, है ना, तो इससे क्या होता है, हमारा माइंड ना एंगेज हो जाता है, ऐसे हम फालतू ओवर थिंकिंग में पड़े हुए हैं, निंदा चुगली में पड़े हुए हैं, है ना, कोई चीज होगी, हस्बैंड से कोई बात होगी या अपने रिलेटिव से कोई बात होगी, बच्चों से कोई बात होगी, उसी के बारे में सोचते रह रहे हैं, सोचते रह रहे हैं, तो दिमाग ने तो खराब होना ही होना जब उसी के बारे में सोचते रहेंगे। हमारे माइंड को ना वो जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं ना, तो एक डिवाइन एंगेजमेंट मिल जाती है ना, तो अपने आप ही फिर माइंड हमारा सही डायरेक्शन में चलने चल जाता है, तो हमारे जो काम में भी प्रोडक्टिविटी आ जाती है और हम भी बेस्ट कर पाते हैं, अपना बेस्ट दे पाते हैं लाइफ में, है ना। तो मतलब बहुत ही अच्छा मॉडल है ये गोलोक एक्सप्रेस ने, सच में मेरा भी इस पे चल के में भी इम्प्रूवमेंट आई कि जब हमने सत्संग किया, उसके बाद साधना जो बोली गई वो वाली चीजें अप्लाई की जीवन में, है ना, माला मैंने पहले कभी नहीं की थी, भोग पहले कभी नहीं लगाया, तो ये सब करने सच में पावर है इन चीजों, है ना, वो जो भोग लगा हुआ प्रसाद हम खाते हैं, इवन फैमिली को देते हैं, तो पूरे घर में बदलाव आ जाता है ना। तो बिल्कुल हमें ये सब चीजें करनी चाहिए और सच में अपने जीवन में उतारनी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब चीजें हमने उतारी हैं, इसलिए हम कॉन्फिडेंस से हम बोल पाते हैं कि भी हमने किया, आप भी कर लो, है ना। तो थैंक यू सो मच किरण जी। और कोई है जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स?
हरी हरी बोल।
हाँ जी, हाँ जी, ईशा जी, हरी बोल।
हरी हरी बोल मोना जी, हरी हरी बोल एवरीवन। मोना जी, आपका सत्संग भी आज पहले की तरह हमेशा डिवाइन रहा, और जैसे कहो कि आप जैसे करवाते हो इतने अच्छे से और इतने अच्छे से सबको समझ आता है, इसके लिए थैंक्स। और आपने जिस तरह से आज बताया कि सदाचार, कि किस तरह से हमारे अंदर जो सब सदाचार जब आता है तो होता तो सबके अंदर ही है, बट एक पहचान नहीं होती इस चीज की कि किस तरह से बिहेवियर अपना कैसे करेक्ट किया जाए, कहाँ से कहाँ गलती है, ईगो आ जाता है हमारे अंदर। मैक्सिमम जब हम इसके स्पिरिचुअलिटी के बिना रहते हैं या इससे कम जुड़े होते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, एक अहंकार होता है, चाहे सूक्ष्म लेवल का हो चाहे बड़े लेवल का हो, तो अहंकार हमें समझ नहीं आती हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि अगर कोई इस लाइन पे, डिवोशन की लाइन पे चल रहा होता है तो रेगुलर जब रहता है, बट कुछ ना कुछ तो परफेक्ट तो नहीं हो सकता ना कोई भी, तो जब कुछ गलती हो जाती है तो फिर दूसरों को होता है कि ये तो बड़ा करती है फिर भी ये क्या है बिहेवियर इसका, तो वो फिर टाइम बाय टाइम ही इसमें चेंजेस आती है। तो हमें आपने ये बताया कि हमें इस तरह से किसी को जज नहीं करना, अपने आप को देखना, अपने बिहेवियर को करेक्ट करना है, कहाँ हम गलत हैं कहाँ नहीं गलत हैं, वो करेक्ट करते हुए भगवान से प्रार्थना भी करनी है कि ये ना हो कि आज हम सही होते तो जा रहे हैं, बट एक सूक्ष्म लेवल का जो अहंकार है वो भी अंदर गुस्सा जा रहा है उसको भी हटाने के लिए हमें प्रार्थना भी साथ साथ करते जाना है और अपने अपने आप को दिन व दिन चेक करते जाना, हर वक्त चेक करना है कि कहाँ पे गलती हो रही है। और अब सच में जब इस लाइन पे जब हम चलते हैं तो हमें ये गलती, जब थोड़ी सी भी कहीं गलती होती है ना, उसी टाइम ऐसे एक अलार्म बज जाता है कि यहाँ तो गलत हो गई, उसी टाइम ऐसे होता है कि बस अब क्या, ये क्यों किया। तो उस हिसाब से फिर जब होता है तो फिर अपने आप को बंदा फिर यही भगवान जी से या उस आत्मा से सॉरी फील करो, तो उससे भी आप थोड़ा सा रिलीफ फील करते हो इस चीज को लेकर। तो इसीलिए जब भी हम किसी और को देखने के जज करना छोड़ दो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है, हम दूसरों को जज करते हैं और अपना दिमाग खराब करते हैं। जब अपना दिमाग खराब होता है तो फिर सब कुछ ही हमारा बिहेवियर आगे पीछे सब चेंज हो जाता है। तो इसीलिए एक ट्रैक पे चलो, डिवोशन एक्टिविटीज करते जाओ, इस ट्रैक पे चलते जाओ, चाहे वो जैसे आपने बताया कि कुछ लोग होते हैं कि एक्सप्रेस करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग जैसे माला करते हैं या मंदिर जाते हैं या सुबह शाम आरती पूजा करते हैं, कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं करते, बट उसके बावजूद उनका बिहेवियर अच्छा होता है। कुछ तो वो पिछले जन्म की कमाई होती है, कुछ वो इस जन्म में भी उन्होंने किया होता, बट वो कुछ लोग एक्सप्रेस नहीं करते इस चीज को, वो अंदर ही अंदर जैसे नाम चल रहा होता, अंदर चल रहा होता है, क्योंकि ना तो वो किसी का फालतू नेगेटिविटी किसी की लेके रखेंगे, ना किसी के बारे में कुछ सोचेंगे, कुछ ज्यादा अच्छा ही सोचेंगे इसका सोचेंगे, दिस मीन्स कि वो भी डिवोशन के रास्ते पर चल रहे हैं और उनसे ज्यादा आगे हैं। इसीलिए ना किसी को जज करो ना कुछ, बस अपने लाइन पे चलते जाओ और भगवान से प्रार्थना करते जाओ, किसी भी प्रकार का कभी भी अहंकार ना आए, बस हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल रिव्यू एज ऑलवेज ईशा जी, बहुत ही ब्यूटीफुली आपने पूरे सत्संग को समराइज कर दिया, आज के टॉपिक को समराइज कर दिया सदाचार को, कि बिल्कुल हमें उसी टाइम पता चल जाता है कोई गलती हो जाती है ना, इमीडिएट मतलब के गलती करके ना एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है ना कि लगता है कि यार आज हुआ क्या, ये किया कैसे मैंने, है ना। तो मतलब चाहे हम किसी को गुस्सा करते हैं, चाहे कुछ उस दिन निंदा चुगली हो जाए, कुछ भी ऐसी बात हो जाए हमसे, तो लगता है कि आज कुछ गलत हो गया हुआ है ना। तो मतलब अगर हमें वो अपनी गलती दिखती है इसका मतलब हम सदाचारी जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमें दूसरों की गलती अगर दिखती है, अपनी गलती नहीं दिखती, अपना कुछ सब अच्छा अच्छा दिखता, तो इसका मतलब हम लोग अभी भी गलती कर रहे हैं, अभी भी हमने चीजें सीखी नहीं है, है ना। सदाचारी कोई जीवन नहीं जी रहे हमारे, और बिल्कुल हम दूसरों को ना असेस करते रहते हैं, अगर कोई माला कर रहा है दो टाइम, बहुत सारा मंदिर जा रहा है, ये बहुत बड़ा मिथ होता है और दुनियादारी में ये वाली चीज है ना, लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली एडवांस है ना। और जो एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है लेकिन उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो देखो मतलब हमारे शास्त्रों में भी उसको ज्यादा स्पिरिचुअली एडवांस बताया है कि जिसका बिहेवियर अच्छा है, मतलब सदाचार को सबसे ऊपर रखा गया है। देखो सदाचारी व्यक्ति जब इस रास्ते में आता है ना तो उसकी प्रोग्रेस बड़े डिफरेंट लेवल पे होती है, उसने क्योंकि या तो उसने बचपन से उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना फ्रेंड्स, उसका खाली अकेले का फैक्टर नहीं है, हो सकता है उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई, उसका आसपास का माहौल, उसके पेरेंट्स ने जो उसको संस्कार दिए हैं कि उसको बचपन से ऐसे संस्कार मिले हुए हैं, कुछ पिछले जन्मों के अकाउंट है अगर है तो, है ना, कुछ वो भी फैक्टर्स हैं। तो ऑटोमेटिकली एक व्यक्ति हो सकता है कि जो पूजा कर रहा है, माला कर रहा है, उससे बहुत अच्छा जीवन जी रहा है ना, और जो माला कर रहा है, जो पूजा पाठ कर रहा है, उसमें फालतू का अहंकार हुआ पड़ा कि मैं तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली एडवांस हूँ, है ना। तो ये सब चीजों से भक्ति जो भगवत गीता हम पढ़ते हैं ना, सब बाहर करती है, हमें सिर्फ अपने अंदर झांकना है कि मैं क्या करती हूँ, मैं दूसरों के लिए क्या करती हूँ, अपने लिए क्या करती हूँ, बजाय ये सोचने की कि दूसरे मेरे लिए क्या करते हैं, है ना। तो अपने पे ज्यादा हम फोकस करते हैं तो अपनी लाइफ को भी बेटर कर पाते हैं फ्रेंड्स, है ना। थैंक यू सो मच ईशा जी। हाँ जी, कोई और जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स? हरी बोल,
हरी हरी बोल मोना जी।
हाँ जी नेहा जी, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज बात कर लो।
आज का सत्संग बहुत अच्छा था, काफी सारे जो डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए बिल्कुल आज तो, मतलब कि मुझे एक चीज की क्लैरिटी हुई, जैसे मैं वैसे भी यही अपनी लाइफ में ये रूल भी एक फॉलो करती हूँ कि किसी की अगर अच्छी क्वालिटीज है वो एकदम अडाप्ट कर लो, मैं तो उसको मतलब कि उसकी वो चीज मैं अडाप्ट करने में ना कोई हेजिटेशन नहीं करती। तो और अगर किसी में कोई बुरी क्वालिटी है उसको जजमेंट मत करो, जज मत करो उसको, उसको इग्नोर ही कर दो उस क्वालिटीज को, और अच्छी क्वालिटीज एकदम अडाप्ट करो, उसी से आपकी जो आप में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। और अपना जो पूजा करना, माला जाप करना वो सब जरूरी है, लेकिन उसके अलावा जैसा आज आपने बताया कि लेकिन उस चीज का भी कोई फायदा नहीं अगर जब तक आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है। और हमें अपने बिहेवियर में कैसे इम्प्रूवमेंट लानी है और कैसे कर सकते हैं, जब हम कनेक्ट होते हैं ना भगवान से, तो हम हमारा बिहेवियर अपने आप इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि हम वही सोच के करते हैं कि हमें वही करना है जो क्या भगवान मुझसे खुश होंगे अगर मैं ऐसा करूंगी, अगर मैं ऐसे ही कर रही हूँ, वो चीज हमें आ जाती है। तो जैसे जैसे हम ये माला जाप करते हैं, नाम लेते हैं, और उससे क्या होता है हमारी एक रेगुलरिटी आती है और हमारे में अच्छी पॉजिटिविटी आ जाती है, नेगेटिव सोचने का या नेगेटिविटी हमें कम दिखती है, हमें लोगों का भी बिहेवियर अपने आप अच्छा लगना शुरू होता है, हम उनमें अच्छाई, हम उनमें पॉजिटिव क्वालिटीज उनकी देखते हैं, जो उनकी डेमन क्वालिटीज है वो हमारे लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है, ये मिक्सचर है, हर जो भी ह्यूमन बीइंग है हर चीज का मिक्सचर है, तो अगर हमें परफेक्शन ढूंढनी है तो वो तो भगवान के चरणों में और उनके उनकी सेवा में ही है, तो ये सेवा करने में जो आनंद आता है, इंटरनल पीस मिलती है, और जो जितना हम इंटरनली स्ट्रांग होते हैं वो उसका वो चीज ही अलग है। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, ब्यूटीफुल रिव्यू नेहा जी, बहुत ही ब्यूटीफुल आपने भी इस टॉपिक को अच्छे से समराइज कर दिया, और बिल्कुल सही कहा कि देखो अल्टीमेटली सब लोग चलते इसी रास्ते में चल रहे हैं, चाहे कोई मंदिर जा रहा है, माला जाप कर रहा है, या किसी का बिहेवियर बहुत अच्छा है, वो समाज कल्याण में भी कर रहा है योगदान, तो अल्टीमेटली कर वो सब एक ही रास्ते में जा रहे हैं, लेकिन वो क्या होता है कि हम लोग फालतू के बीच में रुक के एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, है ना, जो जिनका बिहेवियर अच्छा होता है उनको लगता है ये पूजा पाठ कर रहे हैं, इनको इनको समझ ही नहीं है कि एक्चुअली हमें करना क्या है, है ना, और जो जिनका जो पूजा पाठ कर रहे होते हैं उनको लगता है कि ये लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, ये तो माला भी नहीं करता है, मंदिर भी नहीं जाता है, है ना, तो ये तो कुछ भी भगवान से जुड़ा ही नहीं हुआ है ना, तो मतलब दोनों एक दूसरे पे दोष आरोपण ही करते रहते हैं, तो अल्टीमेटली हम जब भगवद गीता पढ़ते हैं, राइट डायरेक्शन हमें मिलती है, तो हमें समझ आती है कि यार चल तो वो मंदिर वाला भी रहा है और चल तो वो जिसका बिहेवियर अच्छा है वो भी उसी रास्ते पे चल रहा है, तो हमें करना है क्या, हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है, सिंपल हमें अपनी जर्नी में फोकस करना है, है ना, दूसरा क्या कर रहे हैं हमें उस पर फोकस नहीं करना, मतलब हम चीजों को समझ के करते हैं ना, भगवान के हनुमान चालीसा या शिव चालीसा दुर्गा चालीसा कुछ भी पढ़ते हैं ना, तो हम समझ के पढ़ते हैं, ऐसे हम रट्टा मारते हैं भगवान के आगे, ऐसे लगता था पहले हम भगवान को सुना रहे, अरे भगवान बोल रहे तुम सुनो और उसको अप्लाई करो, और हम क्या करते हैं भगवान के आगे बैठ के वो किताबें पढ़ते हैं, बस हो गया, बहुत पूजा पाठ कर ली मैंने आज, एक घंटा बैठी मैंने मंत्र जाप किया ये किया और बस बहुत हो गया, अरे भगवान कह रहे हैं वो मतलब उन किताबों से नॉलेज लो, भगवद गीता से नॉलेज लो और उनको अपने जीवन में उतारो, अपना जीवन बेटर करो, हम करते हैं उल्टा, हमें करना है दुनियादारी को खुश, दुनियादारी को दिखाना है कि देखो मैं एक घंटा पूजा करती हूँ, देखो मैं माला जाप करती हूँ, देखो मैं ये कर रही हूँ, दुनियादारी को फ्रेंड्स साइड में करना है और भगवान को करना है खुश, और भगवान खुश कैसे होंगे हमारे सदाचार से, सिंपल है ना, सत्संग जिस बातें सुन ली, साधना अपना ली, वो सारी चीजें है ना, सेवा की, जो भी हम अपने जो सिचुएशन के हिसाब से अपने कैपेसिटी के हिसाब से अगर हम सेवा करते हैं और सदाचार को जीवन में लाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन बेटर होता है। थैंक यू सो मच नेहा जी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम भजन की तरफ बढ़ते हैं, आज भजन की टर्न किरण जी की है, किरण जी आप भजन गा सकते हो, हरी बोल
जी। हरी हरी बोल एवरीवन, सावन मास है तो मैं सावन मास की ही शिव भोले का भजन सुनाऊंगी और सावन मास की सबको बधाई। सत्य है ईश्वर, शिव है जीवन, सुंदर ये संसार है, तीनों लोक है तुम में तेरी माया परंपार है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्वती जब सीते वन कर, जय श्री राम के सन्मुख आई। राम ने उनको माता कह कर, शिव शंकर की महिमा गाई। शिव भक्ति में सब कुछ सूझा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मने रे शिव की महिमा के गुण गाए जा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरी जटा से निकली गंगा, और गंगा ने विष्म दिया है। तेरे भक्तों की शक्ति ने सारी जगत को जीत लिया है। तुझको सब दे वो ने पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सुंदर शिवम, बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हरि हरि
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत ही प्यारा भजन श्रावण मास का आपने भगवान शंकर पे बहुत ही प्यारा भजन गाया, बहुत ही आनंद आया हम लोगों को। किरण जी थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स अब प्रेयर्स कर लेते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। जय श्री राधे कृष्ण।